तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला अच्छा लगा अच्छा लगा मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन
फरिश्तों के शहंशाह के हाथों से पली हम सब के बीच विराजित आदरणीय तपस्वी मूरत धारणा की दनी राजयोगिनी सोम दीदी उल्लासनगर अभिज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर संभाल रहे हैं वो हमारे बीच पधारे हैं हम उनका एक हाथ की ताली से फरिश्ता बनकर इस फरिश्ते का अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं आदरणीय दीदी जालंधर की धरती से पंजाब की धरती से ये अनमोल रतन बाबा ने चुना विगत 50 वर्ष पूर्व आप 45 वर्षों से विश्व सेवा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रारंभ के सेवा काल में आप मम्मा बाबा के साथ में मधुबन तपस्वी भूमि पर ही सेवाएं आपने शुरू की बाबा ने आपको हमारी आदरणीय ब्रज इंद्रा दादी जी के पास बॉम्बे भेजा और आपने आदरणीय ब्रज इंद्रा दादी जी के सानिध्य सुख को प्राप्त करते हुए अपनी सेवाएं प्रदान की विगत 40 वर्षों से आप उल्लास नगर बॉम्बे से देश विदेश की सेवाएं कर रहे हैं आपकी विशेष अभिरुचि ब्रह्मा बाप को सन्मुख रखकर दधीची ऋषि मिसल कर्मणा सेवा में विश्वास रखना कर्म करके सिखाना ये आपकी विशेष अभिरुचि है ऐसी महान हस्ती हम सब के बीच में उपस्थित है हमें डबल फरिश्ता डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बनाने के लिए मम्मा बाबा के साथ के अनुभव हम सबको प्रदान करेंगी आदरणीय तपस्वी मूरत सोम दीदी
ओम शांति पहले तो मैं ऐसा कहूं कि आप सभी के बीच में शामिल होकर के मुझे बहुत बहुत मेरे नैनों को आनंद आ गया इतना अच्छा लगा आप सभी की मुझे बैठक बहुत पसंद आ गई शायद किसी ने आपको गाइड किया होगा क्योंकि मैं 2-3 बार मुझे पीछे बैठना किसी का अच्छा नहीं लगता है और आगे फ्रंट में बैठना बहुत सभी का पसंद है नजदीक में बैठना बहुत पसंद है आप पूछेंगे क्यों सभी का नजदीक आपको पसंद क्यों है पहली बात तो ये क्योंकि हम बहुत काल के बाद कल्प के बाद इकट्ठे हुए हैं मिलते होंगे मधुबन में आना जाना होता होगा परंतु बिगर पहचान मुखड़े देख लिए बिगर पहचान घूम रहे हैं बहन भाई आए हैं ठीक है अपने हैं पर अभी जो आप सभी के बीच में हमको आपकी बैठक अच्छी लगी मेरे मन पसंद की ये चीज है क्योंकि मुझे मुखड़े देखने को मिले दर्शन करने को मिला मुझे दर्शन बहुत पसंद है ऐसा ही कीर्तन करना वो मुझे पसंद नहीं है और अपने परिवार में आई हूँ और बिछड़ा हुआ परिवार मिला है, कल्प के बाद मिला है, कम से कम मैं अभी तो मुखड़े देखूं, मुझे अवसर मिला है, अब तो मैं दर्शन करूं। फिर जब वहां जाएंगे वहां तो भूल ही जाएंगे, हम भूल जाएंगे, पता नहीं रहेगा। अभी भी देखो कोई कहां से, कोई कहां से, सब बाबा के बच्चों को थोड़ी ही मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, भले अपने हैं, ये पता है कि ये हमारे अपने हैं। कोई चार दिन का लेसन लेने वाला भी, उसकी भी मन भावनाएं बदल जाती है, वो भी हजारों के अंदर होंगी आत्मा, तो भी पहचानने में आती है कि ये कोई अपना है। बाबा का ज्ञान सुनने वाली आत्मा को ही उनसे खुशबू आती है, ये हमारे अपने हैं, लगता है कोई बाबा का बच्चा है, कोई बाबा की बच्ची है। क्यों लगता है? हम कहां के रहवासी हैं? तो अनादि नाता भी हमारा अविनाशी है और आदि रिश्ता भी बहुत अविनाशी है। जितनी मुझे खुशी हुई है आप सभी को देख के, मैं समझती हूँ शायद इतनी आपको भी नहीं हुई होंगी। अच्छा, आज के बाबा के महावाक्यों में आपको कौन सी बात अच्छी लगी? रहम दिल बनना, रहम, बाबा ने कितना बड़ा हमारे ऊपर रहम किया है, कितना रहम किया है। हम कैसे थे जो अर्जी डालते रहते थे, हे भगवान मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, पर आप मेरे अवगुण चित पर ना धरना, मैं कैसा भी हूं कैसी भी हूं तो मुझे अपनी शरण में ले लेना, ये अर्जी थी ना। तो जब उसको अर्जी डाली, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, तो पहले तो त्रेता वाला राम याद आता था, अभी कौन सा राम याद आता? जो सबसे न्यारा राम है। तो एक गुरु ग्रंथ साहब के अंदर श्लोक है, चार राम उसमें दर्शाए हुए हैं, आपको किसी को पता है? हाँ, कौन कौन बैठे हैं, कौन पीछे बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, हाँ, हम बताऊं नंबर बार, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, अर्थात आत्माराम, मेरे आत्माराम को, भले मुझे आत्माराम को नहीं बोलते हैं, वो जो सुन लिया वो कहते हैं, मेरे आत्माराम को दुख मत दियो, मेरा आत्माराम बड़ा दुखता है, पर मैं आत्माराम बहुत दुखी हूं वो नहीं कहना आता। एक राम का सकल पसारा, वो कौन, वो कौन, श्लोक सुन लिया बाकी उसको पता नहीं, वो कौन? एक राम दशरथ का बेटा, वो राम को पता है, सबको जानते हैं दशरथ का बेटा राम कौन है। एक राम घट घट में लेटा, शायद वो भी नहीं पता होगा, वो आत्मा राम हम सभी के गाड़ियों के अंदर अपना अपना बरकुटी के बीच में विराजमान है। घटघट में लेटा एक राम का सकल पसारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब हूं से न्यारा। वो कौन? वो शिव पिता परमात्मा जो राम के भी ईश्वर है, वो सबसे न्यारा है। भले दिखने में नहीं आता परंतु जब बाबा की मुरली चलती थी तो मालूम पड़ता था। अभी अभी साकार बाबा बात कर रहे हैं और एक सेकंड में, एक क्षण में, जैसे कि बाजू में ही बैठ के बात कर रहे हैं। दो तीन दिन से लेकर के अभी ऐसे ही महाभक्ति चल रहे हैं कि बाप को प्रवेश करने में देरी नहीं लगती है। और दूसरा बाप कहता मेरे से उसका बहुत बड़ा प्यार है, मैं सबसे प्यारा वो उसका मुरबी बच्चा हूं, मैं सिक्की लंदा बच्चा हूं। उसने फिर प्यार का क्या जितलाया, मेरे साथ उसका बहुत प्यार है, का कितना अधिकार से मेरे अंदर प्रवेश कर लेता है, फट से प्रवेश कर लेता है। तो जो प्यारा होता है उसके ऊपर अधिकार होता है, हुज्जत होती है, हुज्जत रख करके उसको उसमें तन, उसके तन में अंदर बैठ जाता है, अपना कार्य करना शुरू कर देता है। कभी बोलता है मैं सारा टाइम थोड़ी इस बैल के अंदर बैठा रहूंगा क्या सारा टाइम? यशोवता है क्या बैल के ऊपर बैठ, कभी उसको बैल बोल देगा और उसको वो ये बात कड़वी नहीं लगती है, बड़ा आनंद आता है। कभी उसको लांग बूट बोल देगा, ये उसके प्यार की निशानियां। कभी क्या टाइटल, कभी क्या टाइटल, उसको टाइटल सुनने में भी बड़ी बड़ी खुशी होती, आनंद आता। मैं किसका हूं, किसकी मेरे ऊपर सवारी है? होते बाबा की महाभक्ति कैसे होते, उस रीति से कैच करते हैं। जब ये कैच करने की हमें सूझबूझ आ जाती है फिर बाबा की महाभक्ति बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। कितने भी बाबा कड़क शब्द बोलते हैं, कहा ना कितना क्रोध करते हैं, इतना क्रोध करते हैं जो डिससर्विस कर देते हैं, बाप का नाम बदनाम कर देते हैं। लौकिक रीति में भी कोई बड़े बाप का बच्चा होगा तो उसको अपने बाप की शान का ख्याल रहेगा, मेरे बाप की कहीं शान ना चले जावे, वो भी सोच समझ करके कदम उठाएगा। तो जितलाया मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूं, ऊंचे ते ऊंचा, जिसका ऊंचा नाम, ऊंचा धाम, ऊंचा काम, तुम सिर्फ महिमा गायन करते हो, मेरी इतनी कीमत है तुझे, इतना तुझे अटेंशन रहता है, कहां भी चलते फिरते तुझे इतना अटेंशन रहता है। अटेंशन हमारे कर्मों के ऊपर अटेंशन बाबा खिंचवाते, तुम्हारे कर्म कैसे होने चाहिए, और इतना बाबा ने कर्मों के ऊपर अटेंशन खिंचवाया, और जिन्होंने उस चीज को पिया हुआ था और उनका संग करने का मेरा भाग्य बहुत श्रेष्ठ, मैं अपने भाग्य को कहूंगी बहुत ऊंच मेरा भाग्य, और जो मन में भी नहीं था, चित्त पर भी नहीं था, अचानक क्या हो गया, ये पंजाबी शब्दों में गायन करते हैं, किस्मत जाग पड़ी, सोई हुई किस्मत जट गंवार कीजिए। जट गंवार होते हैं, तो उसकी किस्मत जब जट जाती है तो पता नहीं चलता वो क्या क्या उसको प्राप्तियां हो जाती है। इस प्रकार से मुझे भी, इस आत्मा को भी वो प्राप्तियां हुई। किसके साथ रहने को मिली, मेरे को मिला, सीखने को मिला, जिसने फर्स्ट बाबा की पद्रामणि को और दूर देश के रहने वाले मुसाफर को फर्स्ट रिसीव किया, उसने उस मेहमान को रिसीव किया, उसने इतने अच्छे अच्छे अनुभव उससे सुने और उससे इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली जो एक छप गई हुई है। अभी अभी मैं जब बोल रही थी कि कर्मों की बहुत बहुत संभाल, एक बारी की आपको मैं बात सुनाती हूं। एक बार नासिक आश्रम पर मेरे को दीदी ने बोला, नासिक में तुम जाओ। नासिक जाने के लिए तैयारी हो गई और एक कोई बाजू में ही माता रह रही थी और उसने कहा कि मेरा भी थोड़ी सी छोटी सी तैली कुछ, उनके वहां कोई बुढ़ी माँ थी, उसके लिए बोला दादी के लिए ले जाओ। तो मैं इतनी इनोसेंट थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी, सूझबूझ नहीं थी कि अगर मेरे पास लोड हो गया तो मैं किसी मजदूर को पैसा दे करके और उसको उठा के ले जाऊंगी, वो नहीं थी। तो मुझे लगा कि ये मेरा ही इतना सामान है तो मैं इनकी भी थैली कैसे लेके जाऊंगी। ऐसे कोई चिढ़ के नहीं बोला पर दीदी को बोला, तो दीदी को वो बात मेरी अच्छी नहीं लगी, तो मेरे को थोड़ी आंख दिखाई, आंख दिखाई तो मेरा मूड खराब हो गया। अंदर अंदर जवाब नहीं देती थी कुछ भी, ये हमारा बचपने से नेचर, लौकिक फादर को, लौकिक माँ को, कोई भी मन अपने से बड़ा होगा उसको आगे से जवाब नहीं देना, भले मेरी गलती हो या ना हो, जवाब नहीं देना पी जाने का। पर अंदर गड़बड़ बहुत, चुपचाप दीदी ने किसी भाई को बोला और इसको तुम बस में बिठा करके आओ। जैसे ही बस में बिठाने के लिए गया वो, तो बस आई और बस की लाइन लगी हुई थी, बस में चढ़ने वालों की लाइन थी। बॉम्बे में तो पता नहीं कि कैसे होता है। तो जैसे ही बस आई और सारी लाइन आगे आगे फटाफट फटाफट भागने की कोशिश किया, बस चली जाएगी, और वो जो थैली थी वो मेरी रास्ते में समझो पड़ी थी। तो एक भाई का वो थैली के अंदर पैर फंस के थोड़ा ऐसा जैसे कि गिरने को हो गया, तो मेरे को हंसी आ गई। क्यों हंसी आई? कि इस थैली ने घर में भी गड़बड़ किया और अभी भी इसने गड़बड़ कर दिया। उस थैली का दोष निकाल दिया। तो उस भाई ने बोला मैं गिर गया और तू हंस रही है। दूसरे ने बोला ये ब्रह्मा कुमारी है ना, इसलिए हंस रही है। पहले तो उसी समय मेरे को बहुत अफसोस हुआ, बहुत बहुत शर्म आ गई, खुद को तो आ गई पर गई तो ठीक चली गई। उस भाई ने जाकर के दीदी को बता दिया ये बात कि दीदी ऐसी ऐसी बात है। एक मास के बाद, डेढ़ डेढ़ मास के एक मास के बाद में नासिक से श्याम सेंटर पर दीदी जहाँ थे तो वहाँ पर आई मिलने के लिए, तो दीदी ने मेरे से बात नहीं किया। जो दीदी की मन पसंद की चीज थी वो बाबा के लिए आए, मैंने अंगीकार ना करके दीदी के लिए वो रख करके छोड़ी, क्योंकि दीदी के साथ बहुत प्यार था। ये दीदी के लिए मैं ले जाऊंगी, दीदी को बताओ, दीदी आंख उठा के उसको देखने के लिए तैयार नहीं। तो मुझे लगा पता नहीं क्या बात है, मेरे से क्या गलती हो गई, क्यों दीदी मेरे से बात भी नहीं कर रहे। मैं ओम शांति किया, ओम शांति भी नहीं किया, इतने दिन के बाद में आई हूं मैं। आखिर भी दीदी ने बात खोली कि तू ऐसा ऐसा किया, बदनामी किसकी हुई, तेरी किसकी हुई, क्या बोला उसने, ये ब्रह्मा कुमारी है, पहले ब्रह्मा का नाम आया, तू बदनाम करने वाली ही उसकी है संतान, ब्रह्मा को तुम उसकी शिक्षा को उसके पालना को ये तुमने प्रत्यक्ष किया। मेरे तो दिमाग से हवा निकल गई, सोचा कि मेरे से मैं बाबा की बदनामी करवाने के निमित्त मैं लायक बच्चा तो नहीं हुआ ना। जो आज बाबा ने कहा ना कि जो रायल बाप के बच्चे होंगे और वो अपने बाप की शान का बड़ा उनको ख्याल होगा, वो दिन और आज दिन मुझे इतना अटेंशन रहता है, मैं बाहर निकलूं किसी के मुख से ये नहीं, मेरे ऐसे कर्म ना हो जावे किसी के मुख से ये ना निकले कि ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी है, इनको यही शिक्षा मिलती है, कुछ भी बोलते हैं वो, ऐसा मेरे से कर्म ना हो जावे कोई, ये अनुभव मिला। बाहर मुझे इस संसार के अंदर कैसे रहना है, क्या करना है मुझे, तभी कहते हैं अज्ञान काल में भी कहते संबल संबल पग धारना बाबा, संबल संबल पग धारना, संबल संबल करके सोच सोच करके कर्म करना, उसके बाद कर्मों की जानकारी आज बाबा ने बहुत दिया ना। उसके बाद फिर एक बार क्या हुआ, हुलासनगर में ही मैं रहती थी और दीदी से प्यार बहुत होने के कारण और दिन में कभी कभी दो बार भी चले जाती थी, कभी हफ्ते में भी, मतलब ऐसे जाती थी, और पास मेरी निकली हुई होती थी लोकल ट्रेन की। तो एक दिन मैं सुबह 5 बजे गई और पास मेरी खत्म हो गई और सुबह देते नहीं थे, उस दिन पता नहीं किसी ने कैसे मेरे को वो उसने टिकट मास्टर ने दे दिया, पास दे दिया। मैं ट्रेन में बैठ गई, मैं उसके ऊपर नाम लिखना भूल गई, नाम नहीं लिखा और गई, जो भी कुछ था बाबा के भंडारे में वो दीदी को सब कुछ दे दिया, वहां पोता मेल जो भी था वो सब कुछ दीदी को सौंप दिया, सिर्फ पर्स में 10 रुपए रखा कि रास्ते में मेरे को काम आ जाएगा, 10 रुपए रखा और उसके ऊपर पास के ऊपर नाम नहीं लिखा। जैसे ही मैं कुरला स्टेशन पर आई तो गाड़ी स्टेशन पर आ गई, गाड़ी स्टेशन पर आई तो मैं ऊपर पुल पर थी और दौड़ के जाके मैंने गाड़ी पकड़ी, तो सीढ़ी के आगे ही फर्स्ट क्लास डब्बा था, तो मैं उसके अंदर चढ़ गई। मैंने सोचा मैं अगले स्टेशन पर चेंज हो जाऊंगी, कर दूंगी। जैसे ही मैं चढ़ी तो घाटकोपर आना था दूसरा स्टेशन, मैं घाटकोपर से फिर उतर के दूसरा चेंज कर दूंगी। तो ये बाजू से चढ़ी, ये बाजू पकड़ के बाहरी दरवाजा ऐसे डंडा पकड़ करके खड़ी हूं, जब दूसरे साइड में वो घाट को पर आ रहा है तो फिर मैं उस साइड में जाके उतरेंगी ना प्लेटफॉर्म उधर है, तो उधर से मैं उतरने लगी तो टीसी वहां से चढ़ के आ गया, उसने मुझे पकड़ लिया, कहा ठहर जाओ इधर, ठहरा लिया, टिकट दिखाओ, क्योंकि उसने देख लिया ये तो कभी फर्स्ट क्लास में चढ़ती नहीं है, देख लिया, टिकट दिखाई। मैंने कहा भाई जी मैं कुरला से ही चढ़ी हूँ, मेरे को ट्रेन छूट रही थी इसलिए मैं यहाँ चढ़ गई और मैं अभी उतर रही हूँ, तो मेरे को दूसरे डब्बे में चेंज करना। पर वो भाई सुनने के लिए तैयार नहीं, टस से मस नहीं उसने किया, नहीं चल ऑफिस में। मुझे तो मेरे पैरों से मिट्टी निकलती जावे कि मेरी पोशाक कैसी है, मुझे हर कोई पहचानता है ये कौन है, तो कोई भी समझेगा कि ये दौड़ टिकट शायद चढ़ी है तभी तो इसको टीसी पकड़ के ले जा रहा है। आखिरीन भी मैंने कहा भाई जी मैं ऑफिस में नहीं जाऊंगी, ऐसा मैंने उसको आग्रह किया, परंतु कर जाना ही पड़ेगा, गई जाना पड़ा। फिर उसने मेरे को बोला कि दंड है तुम्हारे को, तुम फर्स्ट क्लास में चढ़ी। वो भी मेरे को याद था कि दंड ब्रह्म कुमारियों के ऊपर पड़े दंड, उसके लिए भी वो भी पापा को पसंद नहीं था। तो एक बार आपने कभी शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो हमारी ब्रिज इंदिरा दादी ने, जबकि उसका लाइसेंस था छोटी बस गाड़ी का, कार का, और उन्होंने चलाई 60 की बस, तो इतनी बड़ी बस चलाई जो फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाई, डेयरिंग बहुत रखी, सभी को बिठा लिया, और दीदी का चलना फिरना किस किस ने देखा है ब्रिजेंद्रा दादी को, जरा हाथ उठाओ, बहुत थोड़ों ने देखा है, बहुत थोड़ों ने देखा है। अच्छा बड़े दीदी को किस किसने देखा है, क्योंकि मैंने कल ज्ञान सरोवर में पूछा, बड़े दीदी को भी कुछ किसी ने नहीं देखा। चलो प्रकाशमणि दादी को भी नहीं देखा है बहुतों ने, प्रकाशमणि दादी को देखा है। हाँ उठाओ उठाओ हाथ, किस किसने देखा प्रकाशमणि दादी को, प्रकाशमणि दादी को ज्यादा बहुतों ने देखा है। तो एक्सीडेंट हो गया, बस का एक्सीडेंट हो गया, पलटी हो गई और कोई कोई बस के नीचे आ गया, एक बहन की तो यहां से बस बांह कट गई, बस के नीचे वो पलटी हो गई, तो बेचारी चिल्लावे भी नहीं, बाबा ने इतनी सहन शक्ति दिया। ये सुनी है कभी किसी ने कहानी, नहीं सुनी है, तो उठी इतनी पहलवानी से, एक एक को ठिकाने लगाया दीदी ने, हॉस्पिटल ले गई, सबको भर्ती कराया हॉस्पिटल में, भर्ती करा करके फिर बाबा के पास गई, बाबा को सब समाचार सुनाया, और पुलिस वाले ने, इंस्पेक्टर ने जाके किसने दीदी को दंड दिया 10 रुपया, तो बहुत उससे खुशी खुशी से गई, बाबा खाली 10 रुपया मेरे को दंड हुआ, खाली 10 रुपया बाबा। बाबा ने कहा छी दंड देके आई है तू, दंड देके आई है, 1 रुपए का भी, 4 आने का भी दंड माना दंड ना, तू ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संतान, तू दंड देके आई है। तो ये मेरी बुद्धि में था कि ये मेरे से दंड मांग रहा है, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है, मैंने अनासी मेरे से मैं चढ़ गई, चलो गाड़ी छोड़ देती थी, बात दूसरी थी, नहीं छोड़ी, मैं चढ़ गई, मैं बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो भी ये भाई मेरा मानने के लिए तैयार नहीं है, पर मुझे शर्म बहुत आवी ऑफिस में खड़े खड़े। उसने मांगा डांट, मैंने कहा बहुत, उससे पर्स उसके आगे फेंक दिया, हाथ से नहीं लिया, जितना इसके अंदर है वो ले लो, हाथ से नहीं दिया, दे दिया पर्स, जितना जो है इसके अंदर से तुम ले लो। मैं हाथ से क्यों दियूं, मैंने मेरी गलती नहीं है, पर आप सभी को मैं बताऊं, इस गलती ने मेरे को 6 मास तक ऐसा लगा कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूं। अगर कभी स्टेशन पर जाकर के मैं खड़ी होती हूं, कोई आपस में भी बात करता था ना, तो भी मुझे लगता था ये मेरी बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देखा होगा मेरे को, स्टेशन पर मेरे को देखा होगा, पकड़ा हुआ टीसी ने, ये मेरी बात कर रहे हैं। बहुत कान लगा करके सुनूं। फिर बड़ी बेचैनी जाकर के दीदी को सुनाया, दीदी ऐसा ऐसा हुआ। उसके लिए दीदी ने मेरे को कुछ नहीं बोला, जाकर के सारी क्लास को सावधान किया कि ऐसा कभी भी काम नहीं करना। सोम ने आकर के बहुत दर्द से मुझे सुनाया, ऐसा कभी कभी मैं भी चढ़ जाती हूँ, आज से लेकर के मैं भी कभी ऐसे बेकायदे नहीं चढ़ूंगी, ट्रेन छोड़ दूंगी परंतु चढ़ूंगी नहीं। ये है बाबा जो हम बच्चों को संपन्न बनाने के लिए आए हैं, संपूर्ण बनाने के लिए आए हैं। आज बाबा ने दैवी गुणों के लिए कितना कहा, क्रोध करना ये आसुरी गुण है और दैवी गुण क्या है, तो दैवी गुणों से तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, मैं तुम्हारा श्रृंगार कर रहा हूं और तुम क्रोध करके अपना श्रृंगार खुद ही तुम बिगाड़ लेते हो। हाँ जी, वो मुझे याद नहीं उसने पर्स खोला या नहीं खोला। मुझे याद नहीं है, सचमुच रियल नहीं याद है, परंतु उसमें 23-10 रुपया। जी जी। मुझे नहीं चिंता हुई, मेरे को मेरे बाबुल की शान की चिंता थी, वो मुझे याद नहीं है, रियल नहीं मेरे को याद। हाँ वो छोड़ दिया। किसको, टीसी को? अच्छा, ये अगर टीसी होती थी तो मेरे को छोड़ती नहीं थी, तो क्या करती थी? तो मुझे जेल में डालती थी। अच्छा अच्छा, नहीं वो तो बैठा था ना उसके गट में, तो उसको भी तो पता था ना कि मेरी बच्ची की गलती नहीं है। जब उसने देखा कि इसकी गलती नहीं है, तभी तो दीदी को भी मेरी गलती नहीं लगी ना। जब गलती लगी तो मेरा वो जो उसकी प्यारी चीज जो उसको ला के दिया, वो भी उसको रिफ्यूज कर दिया। तो मेरा कहने का ये भाव अर्थ है कि हम देवता बनने के लिए जा रहे हैं, नया संसार हम बच्चों के द्वारा बाबा बना रहे हैं, नया संसार। आज मैंने किसी से बात किया और जो हमारे नए बॉम्बे में, अभी आप लोगों के पास ये आई है बात या नहीं वो मुझे पता नहीं है, अभी तक ओपन में सभी मेरे को फिर भी पता नहीं, हो सकता है ओपन हो गई होंगी, परंतु जो वहां पर सेवा चल रही है उसकी मैं आपको बात सुनाती हूँ। एक पनवेल में अपनी डॉक्टर है, उसका अपना हॉस्पिटल है, अच्छा ही बड़ा हॉस्पिटल है, दोनों ही मियां बीबी वो डॉक्टर है। उन्होंने रिसर्च किया, प्लान बनाए कि नए संसार की उत्पत्ति कैसे हो। नया संसार हम बोल तो रहे हैं, पर कैसे हो? तो ये उन्होंने प्लान बनाया, गर्भ संस्कार ऐसा प्रोग्राम उन्होंने बनाया, जो गर्भ के अंदर बच्चा अभी आया ही है, प्रवेश हुआ ही है, और शुरुआत से ही गर्भ से ही उसके संस्कार दैवी बने, दैवी संस्कार बने, ईश्वरीय संस्कार बने। ये सुनिए, अपने कोई सेवक वहां पर बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन हो रहे हैं इसके उपलक्ष में, और कितनी गर्भवती माताएं आकर के सारा मतलब हॉल भर जाता है, वो उनको उत्कंठा होती है कि हमारे पास अच्छी संतान आवे। पहले जमाने में जैसे होता था ना, माताओं को बहुत अच्छे अच्छे फोटो लगाती थी, पढ़ना लिखना बहुत अच्छा, खान पान बहुत अच्छा होता था, और फिर बीच में माताएं इतनी बेपरवाह हो गई, एक्टरों के फोटो लगाना शुरू कर दिया, और टीवी चलाते चलाते भोजन बनाना ये करना ये सब कुछ मतलब केयरलेस हो गई। तो अभी उन्होंने ये इतनी जैसे कि बहुत बहुत गहराई से लेकर के वो प्रवचन तैयार किए हैं, ये फंक्शन करते हैं कि खान पान का कैसा हो और सोच कैसी हो और आपस में घर में वार्तालाप कैसी हो, आपस में सासू बहु मियां बीबी दोनों कुछ भी खिटखिट आकर करेंगे तो वो बच्चे के संस्कार बच्चे को सुनता है, अंदर आत्मा सुन रही है, सब कैच कर रही है। खाना जो माँ खाती है वो उसको मिलता है ना, जब खाना मिलता है तो फिर बातचीत भी वो सुनती है। तो इस चीज से कैच किया, एक माता ने बोला, अपना अनुभव सुनाया कि जो आप बात कर रहे हैं ये हकीकत है, वो संस्कार होते हैं। तो उसने अपना अनुभव सुनाया कि मेरा बच्चा मेरे गर्भ में था तो हमारा बहू और सासू का कैसी खिटखिट होती थी, बहुत माना जिस प्रकार से उनका वो वातावरण चलता था इस प्रकार से उस बच्चे ने उसी वातावरण को क्रिएट करके रखा था घर में। तो वो जब बच्चा आता था तो माँ को इतना डर होता था कि अभी ये आएगा अभी उद्धम मचा देगा। तो उसने बहुत गहरी रीति से कहा कि ये मेरा अनुभव है। दूसरी माता ने अनुभव सुनाया, उसका कुछ गर्भ में बच्चा आया और पति से अनबन हो गई और वो माँ के घर में आ गई। माँ के घर में आने के बाद और उसको माता को यही रखा रहा कि कौन इसको पालेगा, कौन इसको संभालेगा, और बहुत उसको चिंता हो गई। हे भगवान, भगवान के आगे प्रार्थना करना शुरू किया कि ये जन्म से ही इसको तू ले जाना, मैं स्वतंत्र हो जाऊं, मैं स्वतंत्र स्वतंत्र एक ही उसको रट लग गई। ये होवे बच्चा आजाद होवे गर्भ से, तो इसको जन्म से ही कर देना इधर उधर, मैंने खत्म कर देना, मर जावे या कुछ भी हो, और रियल वो बच्चा है सही हुआ। जो उसकी सोच थी ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो बच्चा खुश नहीं हुआ, बाहर हुआ लड़का हुआ उसको, और वो बच्चा खुश नहीं हुआ, उसको कष्ट 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 कष्ट, खुश नहीं हुआ। इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, उस पंडित के पास, उधर ज्योतिषी के पास, परंतु बच्चा खुश नहीं हुआ। आखिरी भी 10-12 दिन का होके ओम शांति। तो इस प्रकार से बॉम्बे में आजकल सेवाएं चल रही है कि गर्भ से ही बच्चा बहुत श्रेष्ठ संस्कार लेकर के आजाद गर्भ से हो गए। तो विचार चला कि यह जादूगर आपकी सचमुच जादूगरी है, जो आपका प्लान है ये बड़ा जबरदस्त है। तो ये बात मैं आज सुबह किसी को सुना रही थी, शायद आप सभी ने किसी ने है तो बहुत पुराना गीत, शायद किसी ने सुना भी होगा, एक गीत भरत व्यास का गाया हुआ है। उसने कहा, दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। फिर कहा, जल पे है थल, थल पे आसमान है, फिर भी एक दूसरे के ऊपर बोझदारी नहीं है, फिर भी एक दूसरे के ना बोझ के समान है। गजब का ये जहान है, बिन खंबे का मकान है, लेकिन यहाँ का जो मानव है वो एक एक कंस का गुलाम है। तो जब ये बाबा की नई नई पॉइंटें, नया नया प्लान निकलता है, तो बहुत अंदर को लगता है कि बाबा, कभी सवाल हुआ था, हमने बाबा से बहुत रो रो करके टाइम मांगा था। मैं जब ज्ञान में आई तो किसी माता ने मुझे ज्ञान माता से मिला, तो उन्होंने बताया था कि बस विनाश जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मेरा लौकिक फादर मेरे से पहले ज्ञान में आए थे और उन्होंने 12 साल का टाइम बताया था, 12 साल के बाद विनाश हो जाएगा। हमने सब कुछ बनाना करना छोड़ दिया, नहीं कोई भी बात नहीं करनी है क्योंकि विनाश हो जाएगा। क्यों करें, विनाश हो जाएगा तो क्यों करें। बस अभी एक ही धुन भक्ति भाव में माना बाबा को याद करना है, विक्रम विनाश करने हैं, बस ये करना है। तो माताओं ने उन्होंने बताया कि विनाश हो रहा है, विनाश हो जाएगा। तो मेरे को 4-5 मास हुए थे ज्ञान में आए, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की युद्ध वार लग गई। तो जैसे ही वो वार लगी तो जो उन्होंने निशानियां बताई थी कि वायरलेस टूट जाएगी और रेडियो सब हो जाएंगे, रेडियो से खबर नहीं आएगी और पोस्टें बंद हो जाएगी, ये सब उस समय ब्लैकआउट हो जाएगा, तो सब हो गया। तो हमको बहुत रोना आया, जब इतना रोना आया, इतना रोना आया, सुबह से लेकर के दोपहर तक हमने कंटिन्यूस रोया, इतनी बड़ी बड़ी आंखें सूज गई रोके रोके। भगवान, मैं इतनी बदकिस्मत, जो आप साकार में आए, पार ब्रह्म छोड़ करके आए, परम धाम छोड़ करके आए, लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं इन नेत्रों से ना आपको देख सकी। हे भगवान, मेरे को एक साल उधार पर दे दो, मैं आपको देख लूं, एक साल उधार पर दे दो मुझे। ये डिमांड करती रही, रोती रही, डिमांड करती रही। इतनी सच्ची दिल से पुकारा उसको, हिचकियां बर बर करके रोया, लेकिन वो जो सदगति का दाता है, जिसको मूर्तियां बना करके ही ले जाना है, ऐसा ले ही नहीं जाना है, क्योंकि उसकी हम सब बारात हैं, तो बारात भी तो उसकी शोभनी की लगनी चाहिए ना। सुना है कभी शिव की बारात गाई जाती है? हाँ सुना है ना माताएं, तो शिव बाबा के तो हम बरातिये हैं, बच्चे भी हैं, बरातिये भी हैं, परंतु उसकी ऑफर है, थोड़े दिन हो गया कि पासपोर्ट तो तुमने ले लिया है, पर गेट पास लिया, गेट पास भी ले लिया है, पर बाप दादा के साथ 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 हम गेट के गेट को क्रॉस करें वो लिया, तो वो तैयार करके ले जाएगा ना, ऐसे कैसे ले जाएगा, उसके साथ में शोभनिक भी तो लगनी चाहिए ना अंदर जाते। तो ये तो उसने कहा ना, साजन सुंदर और सजनी अगर ऐसी वैसी होंगी तो कैसे अच्छा लगेगा। तो उस समय से लेकर के मेरा 65 में ईश्वरीय अलौकिक जन्म हुआ, 65 से लेकर अभी तक विनाश हुआ नहीं है, और उसका बेहद दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे इतना चांस दे दिया जो मैं आपसे मंगल मिलन मना सकी, और आपकी सेवा करके मैं अपने को तृप्त बना सकी, और जो मेरे को पाप कर्म खत्म करने का भी मौका आपने दिया, उसने अवसर दिया, मूर्ति बनने का अवसर दिया। तो हम आप सभी को ये कहूंगी कि जो भी बाबा की गोद में आए हैं और इस फुलवाड़ी को देख के तो मेरे बहुत बहुत नैन सचमुच एक ठर गए, जैसे ठंडे हो गए, बहुत अच्छी फुलवाड़ी लगी। और मैं आ रही थी क्लास में, तो यहाँ आप लोगों को 10 मिनट के लिए छुट्टी मिली, तो मैं आते आते वापस लौट के चली गई। हाँ तो कुछ कुछ मेरे को माताएं मिली, तो मैंने कहा क्या हुआ, क्लास छूट गई क्या? बोला 10 मिनट के लिए सिर्फ छुट्टी दिया है, इसलिए मैं थोड़ा लेट आई, बाकी जी तो करता है। ऐसे ऐसे बाबा के पालना के क्या आपको वो बात सुनाऊं कि बाबा इतने जो कहा ना रहम दिल, अभी अभी बोला ना रहम दिल, इतना रहम दिल। जब मैं फर्स्ट टाइम आई उस समय ये कायदा था, 1 साल के बाद ही भगवान से मुलाकात करनी है जाके, 12 मास से पहले नहीं जा सकते हैं। हम कहूं मेरे को 12 मास कब होंगे, वो मेरे को टाइम नहीं मेरे पास हो भी, आखिर वो दिन आया आज। तो जब मैं बाबा के पास आई तो बाबा ने जो टीचर लेके आई, बाबा ने कहा बच्ची बच्चों को स्नान पानी करा के फ्रेश होके और नाश्ता करा के, और बाबा का हिस्ट्री हॉल ही उस समय होता था, दूसरा ये हॉल नहीं था, खाली हिस्ट्री हॉल, और जो ट्रेनिंग सेक्शन है वो भी ग्राउंड बना हुआ था और ऊपर फर्स्ट फ्लोर ही फ्लोर नहीं बना हुआ था, और थोड़े से बिल्कुल रूम थे। और यहाँ जो पांडव भवन में अभी एक्सचेंज है, वहां पर छोटा भंडारा होता था, और अंदर जो पैसेज से वो हॉल के अंदर जाना आना होता है, और वहां बैठ करके उधर दरवाजा होता था, वहां बैठ करके टाट पत्री वो बिछा हुआ था, और नीचे पट पे बैठ के खाना खाते थे, और जब ब्रह्मा भोजन होता था तो उस हिस्ट्री हॉल में ही भोजन होता था और बाबा भी संग बैठ के भोजन करते थे। पिकनिक बाबा का पहले जमाने में, अभी तो ये क्लासेस का ही कोई हिसाब नहीं। जैसे बच्चों को इतनी छोटे छोटे बच्चे और इतना इतना बड़ा इधर लटका के जा, कोई बिचारी आया ही जाके लेके जाती है कि उसका बस्ता कौन उठाएगा, उसका थैला कौन उठाएगा। ऐसे ही यहाँ भी इस स्टूडेंट लाइफ में ऐसा ही हो गया। एक की क्लास पूरी हुई, दूसरे की फिर एक के पीछे एक। तो एक किसी बहन ने जोक सुनाया था, मैंने नहीं सुनाया, किसी ने जोक सुनाया था कि सुनाने वाले क्या करते हैं, सुनाने वाले टनों के टन सुना रहे हैं और सुनने वाले कान भर भर करके सुन रहे हैं और धारण करने के लिए कना एक। सुनाते हैं टन भर, सुनते हैं कन भर, धारण करते हैं कन भर, कना कना कन भर। तो अभी एक एक कना बाबा का धारण करके हमें क्या बनना है, रहम दिल बाबा के रहम दिल बच्चे। तो जब मैं बाबा के सन्मुख आई तो दीदी बड़े जो थे वो मिलाया करते थे बाबा से, तो दीदियां तोतों को पढ़ा के लेके आती थी। बाबा प्रश्न पूछेंगे, बच्ची पहले कभी मिली हो? जी बाबा मिली। अच्छा, कभी मिली थी? बाबा 5000 वर्ष पहले मिली थी। किससे बच्ची मिलने आई हो? माता पिता से मिलने आई हूँ। अच्छा बच्ची क्या लेने आई हूँ? वर्षा लेने आई है। वर्षा क्या है? ओम शांति। जितना पोपट को पढ़ाया उतना बता दिया और आगे कुछ पढ़ाया ही नहीं था। तो क्या बता मैं। तो जैसे ही मेरे सीजी बाबा ने प्रश्न पूछा तो जो बड़े दीदी थे ना, उन्होंने बोला हमारे जैसा नशा कहाँ, जबकि मुझे जब मैं बाबा की बनी तो ऐसा मुझे नशा चढ़ गया। आप विश्वास करेंगे, बाबा की बनने के बाद आज बाबा की बनी मेरी फुल, आज एक फर्स्ट दिन से ही फुल धारणा A to Z। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, हर चीज की धारणा, खान पान, रहन सहन, दुनियावी लोगों के साथ उठना बैठना, सब मेरा बिल्कुल एकदम स्टॉप। मुझे पता नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, बिल्कुल कुछ पता नहीं है। टीवी हम नहीं देखते, रेडियो हम नहीं सुनते हैं, पता ही नहीं है। सुच टीवी की क्या होती है, टीवी पहले तो टीवियां भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। दादी की आज्ञा होगी तो करेंगे, नहीं आज्ञा होगी तो नहीं करेंगे। अभी जब से लेकर के जे अपने वो बाबा की वो पीस ऑफ माइंड वगैरह वगैरह, ये तो बाबा की क्लासेस, बाबा का प्रवेश तक का ये जब रोल चालू हुआ तब से लेकर के बाबा की आज्ञा, दादी दीदी की आज्ञा अनुसार सब कुछ। और हुलासनगर सेंटर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ताकत नहीं है और बहुत कुछ कर सकता है, पर सब कुछ कर सकता है, पर जिस चीज की दादी की आज्ञा होंगी वो ही करूंगी। गाड़ियां खरीद कर सकते हैं और अभी है, सब कुछ है, कितनी टू व्हीलर है, बच्चियां सब टू व्हीलर पर आना जाना करती है, क्लासेस कराने जाएगी, फोर व्हीलर, डबल डबल फोर व्हीलर है। जब तक दादी ने हाँ नहीं बोली, दादी से हमने परमिशन नहीं लिया, तब तक बिल्कुल भी नहीं। दादी हाँ बोले तो करूंगी, नहीं बोले तो बस ओम शांति। इतनी दादी की आज्ञा का, बाबा की आज्ञा का। तो ये बात सुना रही थी कि दीदी ने कहा वो हमारे जैसा नशा कहाँ, जबकि इतना नशा चढ़ गया मुझे दुनिया भूल गई। आप विश्वास करेंगे, मैंने कट्टर सिखों के घर में जन्म लिया, और जब उनका कुछ वो गुरुपुर्ब वो बोलते हैं, गुरु का कोई उनका दिन होता है ना, गुरु गोविंद सिंह का, गुरु नानक देव जी का, तो उनका वो निकलता है, वो लोग तो जुलूस बोलते हैं, और उसकी जो सर्कस दूसरी भाषा में बोलते हैं, यात्रा निकलती है। उस यात्रा से पहले मैं अपने हस्तों से फूलों के पौधे उपजाती थी और बड़े बड़े फूल उससे पहले आ जाते थे, और जब वो पूर्व आता था सब फूल मालाएं जो भी कुछ होती थी मेरे लौकिक हाथों की घर में होता था, और मेरे हस्तों की बनी हुई ही गुरुद्वारे में जाती थी, उसको पालकी वगैरह को सजाते थे। जब से लेकर के मैं अपने बाबुल को पहचाना, सबसे न्यारे राम को पहचाना, तब से लेकर के मैं, मेरे को कसम है कि कभी मेरे को उस गुरुद्वारे की सीढ़ी का पता होवे वो कैसी है। पाना था जो पा लिया, बस फिर कुछ भी पाने का नहीं। ऐसी हमारी धारणा। फिर भी दीदी ने कहा वो नशा, हमारे वाला नशा कहाँ। बाबा ने कहा, जब ऐसा दीदी ने बोला, बाबा ने कहा बच्ची, चुप करा दिया दीदी को, बच्ची बच्ची कली है, मुरझा जाएगी। आगे शब्द नहीं बाबा ने दीदी को बोलने दिया, बच्ची बच्ची कली है, मुरझा जाएगी। इतने रहम दिल बाबा, तो हम देखें कि सचमुच इतना छोटी बात से भी कितना दिल टूट जाती है, दिल कली मुरझा जाती है, बंद हो जाती है, कहीं मेरे से तो नहीं ऐसी वाचा चल जाती है। आज कहा ना, दुख नहीं देना है किसी को, बच्चे दुख नहीं देना किसी को। इस बात का भी बाबा ने क्या कहा, ये संकेत किया कि ये दुख देना हो जाएगा, बच्ची कली मुरझा जाएगी। फिर हमारी सुनीता बहन ने बोला बाबा की अंग संग का अनुभव सुनाना, बाबा क्या करते थे। जो अभी अभी सुना रही थी ना, अभी टन भर भर करके सुनाते हैं, तो बाबा के होते क्या होता था, हमारी दिनचर्या क्या होती थी। सुबह बाबा क्लास में आते थे, वाणी मुरली चला के गए, फिर प्रोग्राम होता था, आज बच्चों के साथ बाबा पिकनिक करेंगे, आज बच्चों का बाबा के साथ भोजन होगा। आज सारी पार्टी को भंडारे में आकर के भोजन तैयार करना है। आज दिल वाला मंदिर देखने जाना है। बच्ची देख करके आओ, बच्चों देख करके आओ, कौन सी कोठरी में बैठ के तुम तपस्या कर रहे हो, अपनी कोठरी देख करके आना। इतना इतना बड़ा डब्बा भर करके टोली का देना, बच्चों को टोली दे, टोली वाली बहन को बोलते थे, और बच्चे घूमने जाएंगे। ये बाबा की पालना थी। आज बाबा के साथ सारी पार्टी को झूले में झूलना है। श्री कृष्ण को झुलाते हैं ना बहुत प्यार से माताएं। तो अब वो आया है, ये तो पता है ना कि वो कौन सी आत्मा है। सतयुग में थोड़ी हमको स्मृति रहेगी। तो ये बाबा ने यहां टेस्ट कराया, झूले में भी झूलाने का बाबा ने टेस्ट कराया। तो थोड़ा सा अनुभव बाबा ने जो कराया तो वो आपको सुनाती हूं कि ये हमारी दिनचर्या होती थी। बस बाबा से पर्सनल मिलना है, आज बाबा सौगात देंगे और आज बाबा से ब्रह्मा भोजन करेंगे। बाबा साथ में बैठ के ब्रह्मा भोजन करते थे, साथ में पिकनिक करते थे, क्योंकि छोटा बहुत परिवार था। उस समय 5 की भी पार्टी अगर आई ना तो बहुत बड़ी पार्टी समझी जाती थी। इतनी बड़ी पार्टी समझते थे, वो भी एक इस सेंटर से लिया, एक दूसरे सेंटर से लिया, एक दूसरे सेंटर से लिया, तो इतनी बड़ी पार्टी तैयार करते थे। 5-8 की, 6 की, 7 की, जितने भी होंगे। बहने इतनी मेहनत से तैयार करती थी पार्टी। और आज जैसे ही बाबा व्यक्त हुए तो फटाफट संकल्पों की, बाबा ने कहा ना संकल्पों की रचना है मेरी, वो भी कोई कम नहीं। भगवान वो ब्रह्मा के लिए कहते ना, उसको भगवान को संकल्प उठा कि नया संसार जाकर के रचूं, तो ये संकल्पों की रचना। अभी की रचना भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, संकल्प तो श्रेष्ठ है ना। पहला कर्म का फल कैसे निकलेगा, पहले क्या आता है, संकल्प ही आता है ना। तो जितना संकल्प श्रेष्ठ होगा उतना ही कर्म भी पावरफुल होगा। अगर मेरे संकल्प ही वीक है तो फिर मेरे कर्म भी वैसे ही होंगे। लेकिन अब बहुत पावरफुल कर्म करने का वक्त चल रहा है, क्योंकि फिर वक्त नहीं मिलेगा। मेरे कर्मों से ही मेरी पदवी बनेगी। जितना श्रेष्ठ कर्म मैं कर लूं उतना ही मेरा भविष्य उज्जवल होगा। तो आपको भाई टाइम हो गया नहीं? हाँ सुनीता बहन, इनको अनुभव सुनाना है ना आज शाम को ना। हाँ जी, अच्छा तो अभी जी और सुनाएंगी तो 1:15 हो रहा है बहन, 1:15 हो रहा है। देखो आपको मैं एक अपना जो आज आपको ये बात कर्मों की बात सुना रही हूं, जो गायन करते हैं ना कि 1 देवे 10 पावे, वो मेरा अपना अनुभव है। जहां पर मेरा जन्म हुआ, बाकड़ा डैम कभी सुना है? बाकड़ा डैम मेरे लौकिक फादर के हाजिरी में हुआ और फिर वो बन गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद में फिर ब्यासा नदी पर दूसरा डैम तैयार होना शुरू हो गया है जी, पंगा डैम करके उसका नाम, वो बाकड़ा डैम, वो पंगा डैम करके, पोंग डैम ऐसा कहते थे। तो वहां पर फिर उनकी ट्रांसफर हो गई। तो वो बहुत ज्ञानी थे, इतना सभी को ज्ञान, उनको इतना अपने ज्ञान का नशा था और शक्ति भी बहुत थी उसके अंदर। इतनी शक्ति थी किसी के परिस्थिति से पहाड़ गिरा हुआ होगा ना किसी के ऊपर, समझो किसी का बहुत बहुत बड़ा प्रिया और नौजवान कोई चला गया, शरीर छोड़ गया, वहां पर इतना मातम मचा हुआ और वो जाकर के दो शब्द भी सुना देंगे, अमन चैन के छीटे हो जाते थे। मेरे लौकिक फादर की मैं आपको बात सुनाती हूँ, लेकिन किसी की बात वो सुनते नहीं थे। सिख धर्म ऐसा है और वो बहुत कट्टर होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, किसी का ज्ञान नहीं सुनते हैं। पर एक गुरु ग्रंथ साहब के अंदर श्लोक है, बाहों पकड़ कर लीने ग्रह अंध कूकते माया। इसका मतलब है बाह से पकड़ करके कुंभी पाक नर्क से भी निकाल लेता है। वो इतना चतुर है, पावरफुल है, वो निकाल लेता है। लेकिन उससे उसको कुछ सेवाएं बहुत लेनी थी। तो एक दिन करते करते किसी सन्यासी को वो सुना रहे थे, ऐसे बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो उन्होंने ज्ञान मतलब सुनने का उनको अवसर प्राप्त हुआ, कोई दूसरा सुन रहा था उनको ज्ञान सुनाते साधु को। तो जो दूसरा कोई ज्ञानी आत्मा थी वो भी ऑफिसर था और उससे बड़ा ऑफिसर दूसरा था जो उसको सुन रहा था। तो जैसे ही वो साधु को छोड़ा तो उसने बोला, ज्ञानी जी आप बहुत ज्ञान गोष्ठी बहुत अच्छी तरह से साधु के साथ कर रहे थे और मुझे भी लगता है कि मैं भी आपके साथ थोड़ा शेयर करूं, ज्ञान गोष्ठी करूं। तो कहा ठीक है, उसको तो बहुत कुछ आता था। तो उसने अपने मकान का नंबर दिया कि फलाने फलाने मकान पे आप आ सकते हैं। तो कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। और वो बहनों के साथ में बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करते थे, जैसे कोई कोई साधु को ये होता है ना, और उनको भी ऐसा था, किसी ज्यादा करके माताओं के कन्याओं के संपर्क में नहीं आते थे। बहुत पर्दे निशीन हमको भी बहुत रखा था उसने और सभी को भी, उनका था कि अंडरग्राउंड बच्चियां होनी चाहिए, बहुएं अंडरग्राउंड होनी चाहिए। तो चले गया और वहां पर उनको ये ज्ञान सुनाया। वो ज्ञान उसको इतना फिट हो गया, बहुत अच्छा लगा। फिर आके हमको सुनाना शुरू किया और हम तो सुने ही नहीं उसकी बातें। हमने कहा पता नहीं, मेरी लौकिक बड़ी बहन ने कहा पता नहीं ये बुड्ढा कहाँ जा करके फंस गया, कहाँ चला गया, देख जा करके। मेरे को बोला तू देख जा करके, ना जाने जो कभी किसी को ज्ञान सुने ही नहीं, और सो भी किसी माता ने इसको ज्ञान सुनाया, कोई दीदियां बहने ज्ञान सुनाती है, वो देवियां बनने का लेसन देती है, देवियां बनने का मार्ग बताती है, और कहां देवियों को गालियां निकालता और कहां आज कहता देवियां बनने की नॉलेज देती है, वहां पता नहीं किधर ये बुड्ढा चला गया, जाओ जाकर के देख के आओ, मेरे को भेजा देखने के लिए। और मैं भी हंस आंखों से तो गई नहीं, हंस बुद्धि से तो गई नहीं, मैं भी वहां से कचरा ही उठा के आई और क्या सुना क्या देखा, क्योंकि उसने तो सफेद जैसे हमारे वस्त्र ऐसे पहने हुए थे और रुमाल भी बड़ा अच्छा हाथ में लिया हुआ था। मैंने कहा क्या ये कोई सन्यासी है, इतने अच्छे व्हाइट हाथ दूध जैसे कपड़े पहन करके और ये ज्ञान सुनाने के लिए, ये क्या ज्ञान है? मतलब मैं ऐसा ही समझा कि कोई सन्यासी बदबू वाले कपड़े पहन करके जो घूमते हैं बस वही ज्ञान देते हैं। ये उठा के वहां से आई, वो बेचारा सुनाता था और हम उसकी बात सुनते ही नहीं थे। आखिरी भी वो दिन आया जब मेरा भाग्य का सितारा चमका, मुझे ज्ञान मिला और चार थोड़े समय के बाद वो माता के घर में, जो भाई के घर में गीता पाठशाला चलती थी और इन्होंने सब ने जो भी वहां स्टूडेंट जाते थे इन्होंने मिलके राय किया कि सेंटर की जो समर्पण बहने हैं उनको बुला में, उनको बुलाने के लिए उन्होंने राय पास किया, बुला लिया तीन मास के लिए बहनों को बुला लिया। तीन मास तो यूं बीत गए और फिर वहां प्राइवेट मकान नहीं किसी का मिलता था, किसी को जो गवर्नमेंट के क्वार्टर होते थे उनमें ही होते थे। अभी गवर्नमेंट का क्वार्टर कहां से सेंटर खोलने के लिए मिलेगा? तो लौकिक फादर ने समझा कि मैं और हम लोगों को वो अपने साथ में नहीं रखते थे, किसी को भी नहीं रखते थे, गांव में ही हम रहते थे, अपने घर में ही घर संभालते थे। वो 15 दिन के बाद में घर आया करते थे तो रहते ही नहीं थे वहां। तो उसको लगा कि मैं कुछ भी करके अपना कहां कर लूंगा, जो मेरा क्वार्टर है वो मैं दे दूंगा बहनों को। तो उसके मन में आवे, परंतु साथ में ये भी डरे कि ये अपनी माँ को ना जाके बता दे भाई कि इसने सारा घर ही दे दिया उसको, ब्रह्मा कुमारियों को सारा घर दे दिया, ये माँ को जाके बोलेगी तो हमारे घर में तो उदम मच जाएगा, और उधर मेरे को बाबा ये संकल्प देवे कि बाप से आगे बात भी नहीं कर सकते थे तो उनको बोलना शुरू किया, पापा जी आप दे दो ना, दीदियों को नहीं जाने देना, आप दे दो ना अपना क्वार्टर। और अंदर सोचूं कि अगर मैं घर में गई तो फिर मेरे को कहीं कान ना पकड़े तुमने मेरे से ये क्या करवा दिया। तो उसको बोला लिख के दे दो, उधर से उठने तब दिया जब उसको एग्री करवा लिया कि लिख के दे दो, हम अपने घर में अपनी बहनों को रखेंगे। दे दिया सारा क्वार्टर दे दिया। अभी फिर क्या हो गए, वहां पर ऐसा होता जो डबल था ग्राउंड और एक ऊपर फर्स्ट, तो जो ग्राउंड वाले होते थे उनको ही ऐसा कंटिन्यूस उनका आंगन होता था, जो ऊपर वाले होते थे उनका दो इधर वाले भी और इधर वाले भी दो बीच में उनको प्लाट होते थे और कंपाउंड वाल लगा हुआ होता था तो वो था। तो उसने सोचा कि मैं इसमें छोटा रूम बना लूंगा अपने लिए, बना लिया। परंतु इधर भी उसका घर, दूसरे तरफ भी घर और पीछे भी घर, पानी कहाँ निकले? पानी निकलने का कोई सोर्स नहीं। आगे फ्रंट में निकल सकता था परंतु नहीं निकला, वो नहीं हुआ, स्लोप उधर नहीं हुई, जो भी बरसात पड़ती थी सारा पानी अंदर आ जाता था। मकान दे दिया परंतु पानी सारा अंदर आ जाता था और बदबू हो जाती थी, बरसात के दिनों में तो ऐसे ही बदबू बहुत हो जाती है, तो बहुत बदबू हो जाती थी। तो दीदी कभी कभी, मैं रहती तो दीदियों के पास थी, जो भी बहन बोल रहे थे ना कि इन्होंने, मैं शुरू से ही लेकर के 65 से ही लेकर के सेंटर पर ही समझो रही हूँ, सेवाओं में ही रही, परंतु उस समय कर्मणा सेवा ज्यादा थी और रूहानी सेवा मुझे आती नहीं थी। तो उसमें बदबू हो जाती थी जब मैं नीचे कभी बाप की खाना वगैरह या कपड़ा बेपड़ा धोने के लिए आती थी तो फिर बहने पीछे आती थी तो वो बोलती थी अरे तू इधर कैसे आके घुसती, बहुत बदबू है। और मेरा अंदर हृदय कांप जाता था, मैं उनको बोलती थी हाथ जोड़ती हूँ आप मेरे को ये मेरे सामने नहीं बोलो, कहीं मुझे ये संकल्प नहीं आ जावे कि मैंने नाहक ये काम किया, प्लीज मेरे सामने नहीं बोलो। और डर लगता था कि मेरी ये काम किया हुआ प्रभु को अर्पण की हुई चीज और कहीं ऐसा ना हो कि वो रिफ्यूज हो जावे। ये मेरे संकल्प और ये छोटी सी चीज अर्पण, और आज मैं आपको बात सुनाऊं, मैं ये कहती हूं कि उस छोटी सी चीज अर्पण करने के बाद आज हुलास नगर के अंदर, बॉम्बे के अंदर करोड़ों के मकान बिकते हैं, परंतु मैंने आज दिन तक एक भी कोई मकान खरीद नहीं किया। इतना जो गायन करते हैं ना, एक देवे दस पावे, इतना तो ये जो बात मैंने सुनाई आपको, कहा कि भाग्य बनाने का अभी वक्त है, भाग्य बनाना कहीं मिस नहीं हो जावे। तो ये है श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी, और श्रेष्ठ कर्म जमा जरूर कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसा भाग्य बनाने के लिए अगर बाबा ने थोड़ा टाइम दिया है तो उसको खुशी खुशी से सत्कार देकर के वक्त को अपने पुरुषार्थ को बहुत बहुत तीव्र करते चलो। इन शुभकामनाओं से मैं ओम शांति करती हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। ब्रज की कुछ पंक्ति याद आ रही हैं, जो दीदी के इस अनुभव को सुनकर लग रहा है कि दीदी ने जो बाबा को देखा है, वो उनके रोम रोम में जो रस, जो रूहानियत, जो ऊर्जा भरी हुई है, उन्होंने हम भट्टी के सभी होली हंसों के अंदर भर दी है। कहा गया है, ऊधो मन ना दस बीस, ऊधो मन ना दस बीस, एक हु मन, वो ही ले गयो जगदीश। तो बाबा में जो आपकी कॉपी बनी हुई है, आपका स्वरूप बाबा में, हम सबको भी वो गोपियों का रस आ रहा है कि दिन रात और दिन बन जाएं, वर्षों युगों में परिवर्तित हो जाएं। आप सुनाते रहें और हम सुनते रहें। हम कणा धारण नहीं करेंगे, बल्कि पूरे मनोयोग से, पूरे बुद्धि योग से अपने प्यारे बाबा की हर बात को, जो आपने प्यार और अधिकार, कर्मों की गुह्य गति, छोटी गलती छोटी नहीं है, बल्कि मेरे पूरे परिवार को अशो करती है। मेरा ड्रेस, मेरा बैज, ये एक विश्व पिता की देन है, उसकी केयरिंग होना अति आवश्यक है। इतना ही नहीं, आपने ओल्ड इज न्यू दोनों का कम्युनिकेट किया। आप धारणाओं की धनी हैं, लेकिन न्यू जो हमारी योग बल से सृष्टि चलने वाली है, उसके एक्सपेरिमेंट की तरफ भी हमारा ध्यान केंद्रित किया। किन शब्दों में हम दीदी का शुक्रगुजार करें? हम दीदी से संकल्प लेते हैं कि हम भी प्यारे बाबा को अपने मन में, अपने जीवन में, अपने संस्कारों में कणा नहीं, बल्कि घना घना धारण करेंगे, और हम ऐसे ही प्रेम दीवाने, बाबा पर कुर्बान जाने वाले सच्चे रूहानी सोल्जर बनेंगे। ऐसा संकल्प लेते हुए परवाने बनेंगे, ऐसा संकल्प के साथ जी हम आदरणीय दीदी का शुक्रगुजार करते हैं। एक हाथ की ताली से, आपने जो सोम रस हमें पिलाया है, हम इससे अमर भव, अचल भव, प्रेम दीवाने, अवश्य प्रेम परवाने बने रहेंगे। ओम शांति।